नमस्कार, मैं स्मिता माथुर और मेरी चैनल मालती के फूल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए अपनी एक नई कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है हैप्पी मदर्स डे। तो सुनिए मेरी कहानी हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे मम्मा, सुबह सुबह बेटे की प्यार भरी आवाज़ फ़ोन पर सुनाई दी। थैंक यू बेटू, कैसे हो? तुमको हमारा मैसेज मिला? हमने सुबह सुबह ही तीनों बच्चों को मैसेज किया था। हाँ मम्मा, आपके उस गाने से ही तो मेरी आँख खुली थी। मैं अक्सर अपनी भावनाओं को संगीत के द्वारा ही प्रकट करती थी और सुबह सुबह ही मैंने फ़ोन से अपने बेटे, बिटिया और नई नवेली बहू को ऑडियो मैसेज भेजा था। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। तभी बहू की भी शर्मीली सी आवाज़ सुनाई दी। हैप्पी मदर्स डे मम्मा। हम लोग जून में घर आ रहे हैं, अभी अभी बुकिंग की है। और मेरा अंग अंग फूल सा खिल उठा था। मुझे अचानक ही एक साल पहले का मदर्स डे याद आ गया, जब मेरा बेटा मुझसे एकदम दूर चला गया था। ना फोन, ना मैसेज, ना घर आना। मैं दिन में कई कई बार उसको रिंग करती लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठाता। उस समय तो उसको मम्मा अपने जीवन की सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी खलनायिका लग रही थी। पता नहीं क्यों मुझे अपने बेटे की शादी का हमेशा से ही बहुत शौक था। लोग बरसों बरस से बेटे की शादी की तैयारी करते हैं और मैं सदा सुंदर सलोनी बहू की कल्पना में डूबी रहती। मेरी बहू आएगी गोरी चिट्टी सुंदर और सबको बहुत प्यार करने वाली। मैं मध्यम वर्गीय परिवार की बहू लूँगी जो आकर घर संभाल ले और प्यार से मेरे बेटे की भी देखभाल करे, अच्छा सा खाना बनाए और नन्हे नन्हे बच्चों को पाले। जीवन भर खुद घर और ऑफिस की दोहरी चक्की में पिसने के कारण मुझे कामकाजी बहू का कोई आकर्षण नहीं था। मेरी बहू आएगी, मैं उसे सुंदर सा गोल्ड का सेट दूंगी। उसको गोदी में लिटाकर उसके बालों में तेल डालूंगी और जो प्यार मुझे नहीं मिला वो उस पर लुटाऊंगी। मुझे अभी 5-6 साल पहले जब कुछ एरियर्स मिले थे तो मैं पहला गोल्ड का सेट खरीद कर लाई थी अपनी बहू के लिए। मेरी सहेलियों ने पूछा था, अरे बेटी के लिए लिया है आपने? नहीं नहीं, बहू के लिए। अरे मैडम, सब लोग बेटियों के लिए जमा करते हैं और आप बहू पे खर्च कर रही हैं। अब मैं उनको कैसे समझाती, शायद अपने अधूरे सपनों को मैं अपनी बहू के माध्यम से पूरा करना चाहती थी। जो गहने, जो साड़ियाँ और जो प्यार मुझे अपनी सासू माँ से नहीं मिला था वही मैं अपनी बहू पर लुटाना चाहती थी। मैं कहीं भी जाती हमेशा 3 साड़ियाँ खरीदती, बेंगलोर की साउथ सिल्क, कलकत्ता की रेशमी साड़ियाँ और हैदराबाद के मोतियों के सेट से मैंने अपनी अलमारी और बक्से भर लिए थे। मैं बहुत खुश थी। आहा, मेरे बेटे की शादी की तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। लगभग 2 साल पहले जब मेरा बेटा 27 साल का था, मैंने बड़े जोर शोर से लड़कियां ढूंढनी शुरू कर दी। घर परिवार के साथ हम बेटे की जन्म पत्री भी जरूर मिलाते। हम पति पत्नी दोनों का समय मैटरनिटी साइट्स पर लड़कियों को देखने और उनके पेरेंट्स से बात करने में बीतता। बेटे को व्हाट्सएप पर कोई फोटो भेजते तो वो यही कहता, मम्मा शादी की क्या जल्दी है, मैं अपनी माँ और बहन की तो पैम्परिंग कर लूँ अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है। और अधिकतर लड़कियों के लिए वो मना कर देता। 2 साल पहले इन्हीं दिनों मई के आसपास मैंने उसे 3-4 लड़कियों से मिलवा ही दिया। बेटा इनमें से जो तुम्हें पसंद हो बता दो, तुम्हारे पर कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन बेटा बिना हाँ कहे अगली फ्लाइट से फुर। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी अच्छी अच्छी लड़कियाँ दिखाने के बाद भी ये किसी के लिए भी हाँ क्यों नहीं करता है। उसके जाने के बाद बिटिया ने धीरे से बताया, मम्मा दादा को कोई और पसंद है। कौन? उसकी कंपनी में ही एक लड़की है। अगले हफ्ते ही मेरी बेटी की आंखों के ऑपरेशन की डेट तय हुई थी, मोटे चश्मे से छुट्टी के लिए। मेरे पति ने भोपाल से बेटे को फोन करके कहा, बेटा तुम दिल्ली चले जाओ, मम्मा बहुत हिम्मत कर रही हैं, लेकिन ऑपरेशन तो ऑपरेशन है ना, अभी मैं नहीं आ पाऊंगा। और जब हम आई हॉस्पिटल के हॉल में अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे, हंसता मुस्कुराता बेटा अपनी अटैची लेकर सीधे अस्पताल पहुंच गया था। आंखों के ऑपरेशन के बाद बिटिया की आंखों में काफ़ी पीड़ा रहती और हमें उसे बार बार इमरजेंसी में अस्पताल ले जाना पड़ता। लेकिन इन सब झंझावत के बीच एक अलग ही प्रेम कहानी जन्म ले रही थी, 1942 अ लव स्टोरी के समान। मैंने बेटे से धीरे से पूछा, बेटा कौन है, हमसे मिलवाओ ना। सच माँ, उसकी आंखें चमक उठी, मम्मा वो बहुत सुंदर नहीं है लेकिन मुझे बहुत प्यारी लगती है। मैंने कहा, ठीक है तुम उसे बुलाओ तो सही। एक दिन दोपहर को जब मैं गहरी नींद में सो रही थी, घंटी बजी। दरवाजा खोलने पर देखा एक लंबी पतली सांवली सी लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। लंबा ढीला ढाला कुर्ता, जीन्स और गले में लिपटा हुआ दुपट्टा। बेटा उसे दूसरे कमरे में ले गया। लड़की देखने में ठीक ठाक थी और उसके कंधे तक झूमते काले घुंघराले बाल और स्निग्ध हंसी उसको आकर्षक बना रही थी। वो दोनों कमरे में बैठकर बातें करते रहे और मैं उनको कुछ फल बिस्किट देकर वापस आकर सो गई। बेटी का रात भर ध्यान रखने के कारण मेरी नींद पूरी नहीं होती थी। मम्मा मैं उसे घर तक छोड़ने जा रहा हूँ, तब भी बेटे ने धीरे से आकर कान में कहा। और रात को लगभग 12 बजे वो सीधा अस्पताल ही पहुंचा था, जहाँ बिटिया को इमरजेंसी में लेकर जाना पड़ा था। इतनी परेशानियों में भी उसके चेहरे पर एक शैतानी भरी मुस्कुराहट खेलती रहती और बहन को खुश करने के लिए वो तरह तरह से डांस करके दिखाता। गुड़िया बोली, मम्मा दादा को ये लड़की बहुत पसंद है। उनके साथ में वो बहुत खुश रहता है और बहुत कंफर्टेबल, वो जैसा है वैसा ही उन्हें पसंद है। बाद में पता चला सुधी बेटे के अंडर में इंटर्नशिप करने बॉम्बे आई थी और वहीं उनकी दोस्ती हुई थी। ऑफिस की प्रॉब्लम्स शेयर करते करते वो ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करने लगे थे। मैंने भी सोचा शादी तो करनी ही है, फिर बच्चे की पसंद की क्यों नहीं की जाए। इस बीच में सुधी के पापा भी अस्पताल में आए सुधी को लेकर गुड़िया को देखने, और उसके मम्मी पापा घर में भी गुड़िया को देखने आए थे। और हमें आते शनिवार का डिनर का निमंत्रण देकर चले गए। मम्मी पापा दोनों हंसमुख, स्मार्ट और वेल बिहेव्ड थे। मैंने सोचा दुनिया भर की सारी लड़कियों की जन्मपत्री मिलाते हैं और जिसे वास्तव में शादी करने जा रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ तक नहीं पता। मैंने उसकी मम्मी से टाइम और डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया। मेरे पति ने तुरंत ही मिलाकर देखा और वहीं से दूर से थोड़ा झल्ला के बोले, पत्रिका नहीं मिल रही है। एक हफ्ते बाद पति भी आ गए थे। लड़की को घोर मंगल है और द्वादश योग भी है। मेरे मन में उठती खुशी की लहर अचानक ही गुम हो गई थी। मंगल तो मेरे बेटे के लिए बहुत ही अनिष्टकारी होगा, मैं कैसे हाँ बोल दूँ। फिर भी शनिवार की शाम को हम उनके घर डिनर पर पहुंच गए थे। मैंने टीका करने का सब सामान भी बैग में रख लिया, अब जो होगा वो देखेंगे। किंतु अचानक ही हमें धक्का सा लगा जब मैंने कुछ वास्तविकता मेरे सामने आई। मेरी कल्पना की बहू वो नहीं थी। मेरी कल्पना की बहू जहाँ गोरी चिट्टी और घुंघराले बालों वाली थी, ये सांवली सलोनी सी और कुछ कंधों तक कटे बालों वाली सीधी सादी सी लड़की थी, जो कि बाहर काम कर करके थोड़ी सनबर्नड हो गई थी। अभी तक मैंने उसे अस्पताल या घर की हल्की लाइट में ही देखा था। मेरे गोरे चिट्टे हैंडसम बेटे को इस लड़की में क्या दिखा? क्या इसी लड़की के लिए मैं बरसों से सपने संजो रही थी? कहीं से भी वो मेरी बहू की कल्पना में खरी नहीं उतरती थी। हम तीनों उदास हो गए और बिना टीका टिप्पणी किए ही वापस आ गए। हमने रात में ही बेटे को मेल करके और व्हाट्सएप करके मना कर दिया कि हम किसी भी तरह से इस विवाह के लिए तैयार नहीं हैं। एक तो लड़की हमारे सपनों के अनुरूप नहीं है, ऊपर से कड़क मंगल और विजातीय। किसी भी तरह हमारा मन इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। लड़की वेल क्वालिफाइड थी, उच्च पदासीन पिता की पुत्री थी और बेटे की ही कंपनी में थी, लेकिन हमारा घोर संस्कारी मन इस रिश्ते को नहीं स्वीकार कर पा रहा था। हमारा मेल मिलते ही अगले ही दिन बेटा बॉम्बे से दिल्ली आ गया और हम उसे मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो तो जैसे कोई और ही था। उस सांवली सलोनी लड़की ने मेरे कामदेव से बेटे पर जाने कौन सी जादू की छड़ी फेर दी थी। मम्मा वो बहुत गोरी है, फील्ड में जा जाकर सनबर्न हो गई है। पिछला 1.5 साल हमारे लिए अत्यंत कष्टमय रहा। हम बेटे को समझाने की कोशिश करते और वो हमें, मम्मा हमें इन पंडितों पर विश्वास नहीं है, जो होना है वो होकर रहेगा, हम और आप क्या कर लेंगे। लड़की सुंदर नहीं है तो क्या हुआ, मुझे तो बहुत प्यारी लगती है। मैं कौन सा ऋतिक रोशन हूँ? मम्मा, लड़की सीधी और इंटेलिजेंट है। आजकल की लड़कियाँ ऐसी नहीं होती, बहुत तेज़ होती हैं, आप समझिए। तो हमने 2-3 ज्योतिष आचार्यों को और कुंडली दिखाई, दिल्ली में, लखनऊ में, भोपाल में, सब जगह। सबका एक ही कहना था, लड़की घोर मांगलिक है, बेटे की जान को खतरा है, दाम्पत्य सुख और संतान सुख भी नहीं है, और बहुत जल्द इनमें अलगाव भी हो जाएगा। मेरा माँ का मन बहुत बुरी तरह से डर गया था, ये किसी तरह इस रिश्ते को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। मैंने और मेरे पति ने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन वो हो हो करके जोर से रो पड़ा। मम्मा, आप सच्चे प्यार को समझिए, वो मुझे बहुत प्यार करती है। अगर आप मेरी उससे शादी नहीं करेंगे तो मैं जीवन भर किसी और से विवाह नहीं करूँगा। इस बीच में मैंने उसके मम्मी पापा और सुधी को भी समझाया, सुधी को फ़ोन पर डांटा भी कि शायद उसके मन में अलग हो जाए वो किसी तरह से, बुरा भला भी कहा, लेकिन वो चुपचाप आंसू बहाती रही और कुछ बोली नहीं। समय बीतता गया, बेटे की उम्र बढ़ने लगी, 29 साल का वर, क्या अपनी जिद में वो ऐसे ही समय निकाल देगा? मेरी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया। धीरे धीरे करके ये बात सभी को पता चल गई, नंदों को, देवर को और मेरे भाइयों को। शुरू में सबने बेटे को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सब हार गए। सबने अपने अपने हाथ टेक दिए। सबके फोन मेरे पास आने लगे, भाभी, दीदी, बेटे का कहना मान लो, नहीं तो बेटे से भी हाथ धो बैठोगी। पढ़े लिखे बालिग हैं, अगर कोर्ट में जाकर शादी कर ली तब तुम्हारा क्या मान रह जाएगा? फिर लड़की के माता पिता उसके साथ हैं, तुम्हारा बेटा अकेला पड़ जाएगा। बेटे की बढ़ती उम्र की चिंता और सब ओर से दबाव, क्या बेटे की शादी के मेरे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे? उसकी जान की, उसकी हेल्थ की चिंता और अंधकार में भविष्य मुझे सोने नहीं देता। अंत में मेरे पिताजी ने मुझे समझाया, बेटा, आजकल बच्चों की बात मान लेने में ही समझदारी है, हो सकता है उस बच्चे के जन्म पत्री का समय गलत हो, और यही लड़की तुम्हारे बेटे के लिए बहुत अच्छी पत्नी साबित हो। हाँ, इस बात पे तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था, समय तो गलत हो सकता है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अकेली पड़ गई हूँ, पूरा परिवार तो मेरे बेटे के साथ है, अब यदि खोए बेटे को पाना है तो अपनी ओर से ही पहल करनी पड़ेगी। फिर नवरात्रि के पहले दिन मैंने देवी जी के सामने दोनों बच्चों की पत्रिकाएं रखी और हाथ जोड़ दिए, हे माँ, मैं दोनों बच्चों को आपको समर्पित करती हूँ, अब आप ही रक्षा कीजिए, और बेटे को हाँ का फोन कर दिया। आती कार्तिक पूर्णिमा की रात चंद्रमा की पूर्ण रोशनी में दोनों बच्चों ने हीरे की चमकती अंगूठियाँ एक्सचेंज की और हमारा आशीर्वाद लिया। बड़ी प्यारी एंगेजमेंट हुई दोनों की। शायद वो कठिन समय था जो निकल गया। हमने खूब धूमधाम से उसी सांवली सनौनी बच्ची से बेटे की शादी करी, सब रिश्तेदार आए, खूब हो हल्ला हुआ, और मैंने अपने सारे अरमान भी पूरे किए। मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया, हंसता मुस्कुराता, नाचता, और साथ में प्यारी सी बहू भी। शायद इस हार में ही मेरी जीत छुपी थी। तो चलिए, मेरी कहानी हैप्पी मदर्स डे यहीं समाप्त होती है। और ये कहानी यद्यपि मैंने मैं करके लिखी है, लेकिन इसका किसी भी जीवित या जो व्यक्ति अब नहीं है उनसे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि समाज में इस तरह की घटनाएं आजकल बहुत देख रहे हैं और उन्हीं से प्रेरित होकर मेरी ये कहानी लिखी गई है। सभी बच्चे अपनी पसंद की शादियां कर रहे हैं और शुरू में सभी माता पिता मना करते हैं, क्योंकि उनको सजाती लड़की चाहिए होती है और अपने सपनों के अनुरूप उनको कोई लड़की चाहिए होती है। लेकिन बच्चों के सपने उनसे बहुत अलग होते हैं, बच्चों की पसंद बहुत अलग होती है। और शायद समझदारी इसी में है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों की बात मान लेते हैं वही सुखी रहते हैं और उनके बच्चे भी सुखी रहते हैं। तो चलिए, अपने नेक्स्ट एपिसोड में मैं फिर आऊँगी किसी और कहानी के साथ, जीवन से जुड़ी किसी और घटना के साथ में। ओके, बाय, सी यू।